ओम शांति। 3 जनवरी 2020, आज का विशेष पुरुषार्थ। कोई भी कर्म करते सदैव यह स्मृति रहे कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उसके हाथ में है, अर्थात जीवन उसके हवाले है। हवाले अर्थात उसके अधीन, हवाले अर्थित उसके सुपुर्द, हवाले अर्थात उसको दिया हुआ, हवाले अर्थात हैंडओवर, हवाले अर्थात सरेंडर, हवाले अर्थात समर्पित, हवाले अर्थात वारी, हवाले अर्थात कुर्बान, हवाले अर्थात सौंप दिया, हवाले अर्थात दे दिया, हवाले अर्थात हो गई, बाप की हो गई, हवाले अर्थात सब कुछ उसका, हवाले अर्थात अब उसकी जिम्मेवारी, हवाले अर्थात अब मेरा नहीं, हवाले अर्थात अब हवाले अर्थात स्वाहा, हवाले अर्थात हवन, हवाले अर्थात हो गया, हवाले अर्थात न्योछावर, हवाले अर्थात दे दिया, सौंप दिया, न्योछावर कर दिया, वारिक सब कुछ तेरा कर दिया। कोई भी कर्म करते सदैव यह स्मृति रहे कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ है, बाबा मेरे, बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो, बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। तो हर कर्म में सदैव यह स्मृति रहे कि बाप दादा मेरे साथ है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ किसके हाथ में दे दिया है, उसके हाथ में, अर्थात जीवन उसके हवाले, संपूर्ण शरणागति उसे सौंप दिया है। और जब उसे सौंप दिया है तो कोई चिंता नहीं, जब उसे सौंप दिया है तो निश्चिंत, जब उसे सौंप दिया है तो अब मुझे सोचने का काम नहीं, जब उसे सौंप दिया है अर्थात अब निश्चिंत, जब उसे सौंप दिया अर्थात बेफिक्र, अब उसे सौंप दिया अर्थात निर्भय, अब उसे सौंप दिया अर्थात तनाव मुक्त, उसे सौंप दिया अर्थात बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, अब उसका कोई चिंतन नहीं। अगर चिंतन फिर भी चल रहा है अर्थात सौंपा नहीं है, फिर जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। वो समर्पण कितना गहरा होना चाहिए, फिर सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को क्या कर दो, हल्का, तो क्या बन जाएंगे, कर्मयोगी फरिश्ता बन जाएंगे। हर आत्मा बोझिल है, किससे है वो उसे भी नहीं पता, अदृश्य बोझ लिए घूम रही है, बोझ का टोकरा, उसमें चिंताएं हैं, उसमें दुख है, उसमें परेशानियां हैं, उसमें मुश्किलातें हैं, उसमें भय है, उसमें असुरक्षा का भाव है, उसमें पश्चाताप है, उसमें अनिश्चिंतता है, इनसिक्योरिटी, पता नहीं क्या होगा, ये भाव समाया हुआ है। ये करना नहीं चाहिए था फिर भी हो गया, इसका पश्चाताप है। तो कोई भी कर्म करते सदैव क्या करो, हल्के रहो। तुम हो दीपक, मैं परवाना, मैं हूं तन्मयता, तुम गाना, तुम पागलपन, मैं दीवाना, बिन तुम्हारे जीवन निरस, सुमनहीन मधुमास, मेरे उर में बस जाओ तुम, बन के उर की प्यास, अपना हृदय उदार बिछा लो, अपने में मुझे मिला लो, मुझे मिटा दो, मुझे बना लो। तो सरेंडर अर्थात स्वयं को मिटा देना, मैं की मटकी फोड़ी और हृदय मक्खन हो गया। क्या कहते हैं हिंदी में, मैं की मटकी फोड़ते ही क्या हो गया, हृदय मक्खन मक्खन हो गया। तो समर्पण अर्थात मैं का समर्पण, मैं की मटकी फोड़ देना, ये मैं ही उसके और मुझ में, मेरे बीच सबसे बड़ा व्यवधान बाधा है। इस मैं को हटा देना तो वो और मैं क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो समर्पण, बाबा ने कहा समर्पण कर दो। किन बातों का समर्पण करेंगे? समर्पण की बहुत सारी परिभाषा है। एक परिभाषा है समर्पण अर्थात सर अंडर, समर्पण अर्थात जो घास होती है ना पानी के नीचे उगती है, इधर से बहाव आता है तो इधर झुकती है, उधर से आता है तो उधर झुकती है, इधर और उधर, समर्पण। तो समर्पण की पहली परिभाषा समर्पण अर्थात सरेंडर। दूसरा समर्पण अर्थात हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जैसे वो करा रहा है हम कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, सब कुछ उसके हवाले, उसके अधीन, उसके सुपुर्द कर दिया है। वो चला रहा है, वो करा रहा है, ऊपर से सब कुछ हो रहा है। हम दादी जानकी ने कभी पूछा था टीचर्स से मुलाकात, टीचर्स बहनों की भट्टी थी, क्या समझती है अपने आप को, सेवाधारी कौन कौन समझता है हाथ खड़ी करो, दूसरा निमित्त तो कौन कौन समझता है हाथ खड़ी करो, और तीसरा कठपुतली कौन कौन समझता है अपने आप को। तो तीन शब्द है, एक है सेवाधारी समझना, एक है निमित्त समझना, और तीसरा कठपुतली। सबसे ऊंचा कौन सा है? क्यों, निमित्त नहीं है? हम निमित्त है, बाबा हमसे करा रहा है। मैं निमित्त हूं, तुम नहीं निमित्त, मुझे निमित्त बनाया बाबा ने। मैं निमित्त होने का ये कहना भी कि मैं निमित्त हूं, निमित्त मात्र कहते हैं, मैं निमित्त हूं, कैसे कह रहे हैं, निमित्त मात्र, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, तुमको नहीं बनाया, तुम चुप बैठो, मैं निमित्त हूं, निमित्त होने का अहंकार। और सेवाधारी, मैं सेवाधारी हूं, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, सेवा हम करते हैं, सेवाधारी में भी मैं है, निमित्त में भी मैं हो सकता है। कठपुतली का क्या है, उसका कुछ है नहीं, वो अपने आप कर रही है, ऊपर से उसकी डोर है। वो राजस्थान में कठपुतलियों का खेल होता है ना, ऊपर से उंगलियां होती है, वो बेचारी जैसा वो बुलवाता है, जैसा वो नचाता है, सब कुछ उसके अधीन है, वो करा रहा है। पर कठपुतली की अवस्था अचानक और सडनली एकाएक नहीं आएगी, शुरुआत है सेवा से, पहले सेवाधारी, उसके बाद निमित्त, और उसके बाद फिर कठपुतली। तो समर्पण अर्थात दूसरी परिभाषा हुक्मी हुकुम चला रहा। समर्पण की तीसरी परिभाषा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, न व्यक्तिगत इच्छाएं, न व्यक्तिगत लक्ष्य, न व्यक्तिगत धन, न व्यक्तिगत संपत्ति, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ उसका है, सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके लिए है, सब कुछ उससे है। सूफियों की कहा गीत है, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज किया है, जो तेरी राजी रजा है उसी में मेरी रजा है, मुझे ऐतराज किया है, क्यों, क्योंकि मैंने इतना बड़ा आशियाना बना रखा है, कब तेरी बिजली आकर गिरेगी और खत्म कर देगी, तेरे पास बिजलिया है, मेरे पास आशियाना, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा, होई सोई जो राम रच रखा, जैसे तूने रच रखा है बस वैसे होगा, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। समर्पण अर्थात व्यक्तिगत कुछ नहीं, न वस्तु न व्यक्ति, न किसी वस्तु पर अधिकार, सब कुछ उसको स्वाहा कर दिया, उसके ऊपर अर्पण कर दिया है, ये समर्पण की तीसरी परिभाषा। चौथा समर्पण अर्थात बहुत सारी चीजों का समर्पण, समर्पण अर्थात श्रीमत के अंडर, समर्पण अर्थात अंडर किसके, श्रीमत के। जो कुछ किया जा रहा है मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर किया जा रहा है, मर्यादा को तोड़ा तो समर्पण नहीं, मर्यादा को तोड़ा तो समर्पण गया। यह भी एक परिभाषा है समर्पण की। उसके बाद में समर्पण अर्थात सबसे पहला समर्पण है तन का समर्पण, उसमें तीन बातें हैं। भूख प्यास निद्रा, ये शरीर के धर्म है, इनका भी समर्पण। वो अगर खिलाए तो ठीक, नहीं खिलाए तो आंदोलन नहीं करना है, भूख हड़ताल या कोई और दूसरा धरना कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए। प्यास जो वो पिलाए वो ठीक, ना पिलाए तो भी ठीक। नींद, सेवा की व्यस्तता इतनी बढ़ेगी कि नींद करने का तुमको समय नहीं मिलेगा, बाबा ने कहा है। लोगों की भीड़ लगेगी, तीनों का समर्पण। दूसरा है, पहला तन, दूसरा मन। मन के तीन काम है, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। हमारी अब व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं, जो इच्छाएं हैं वो यज्ञ के लिए है, जो ये इच्छा है वो सेवा की इच्छा है बस, नहीं तो वो ये इच्छा बांध देती है। सोचना, बाबा ने कहा तुम्हारा हर संकल्प इतना शुद्ध हो कि उसका भोग लगा सको, एक एक संकल्प इतना शुद्ध हो, इतना शक्तिशाली हो। कल की मुरली में वाक्य था, बाप वारिस के लिए क्या कहा था कल, जो बाप को अपना वारिस बनाते हैं बाप उनको अपना वारिस बनाता है। बाप को वारिस बनाना ये कईयों को समझ में नहीं आता है, बाबा ने कहा समझते नहीं है क्या करना, बाप को वारिस बनाना अर्थात करना क्या है, सब कुछ उसको उसके नाम पे विल कर देना, वसीयत, आज से ये सब उसका है, नीचे अपनी साइन। वो तो तैयार है। तन, हाँ, सोचना, फिर इच्छा करना और महसूस करना, फील, जो इस उसकी इच्छा वो हमारी इच्छा, जैसा वो फील करता है वैसे ही खुद फील करना है। मुरली में बाबा ने कहा तुम्हें आवाज नहीं सुनाई देती, पुकार नहीं, दुखियों की पुकार, समय की पुकार और भक्तों की पुकार। अभी अभी शांतिवन में मुरली चली, ये तुमको सुनाई देनी चाहिए। तो भावनाओं को श्रेष्ठ बनाना है। आज का स्लोगन क्या है मंजू बहन, सुना क्या है अभी स्लोगन? स्लोगन कौन सुन के आया है? दिल की महसूसता से क्या करना है, दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेना है। दिल की महसूसता से महसूस करना, फील करना, रियलाइज करना, तो ये तीनों ही समर्पण। तो तन में तीन, मन में तीन, धन में फिर तीन बातें। तीसरा है धन का समर्पण। धन जो है वेल्थ, पहला किस उद्देश्य से कमाया जा रहा है, लक्ष्य क्या है, धनपति बनने का लक्ष्य है या इस लक्ष्य से कमाया जा रहा है कि ये जो धन कमाया जाएगा ये बाबा की सेवा में लगाऊंगा, किस लक्ष्य से धन कमाया जा रहा है। दूसरा, वो धन जो है उसके प्रति आसक्त तो नहीं है हम, धन में आसक्ति, धन जेब में रहता है तो खुशी, नहीं रहता है तो दुख, धन की आसक्ति। एक तो कमाया किस उद्देश्य से जा रहा है, वो कमाने का उद्देश्य भी समर्पण, ये जो धन है इसकी जो आसक्ति है ये भी समर्पण, ये भी भूत है। कल की मुरली में था ना, भूत भूत को क्या करो, भगाओ। तुम अभी रात में हो, रात में चेष्टा होती है विकारों की, जब दिन आ जाएगा तो ये विकार चले जाएंगे। कितना अच्छी वाक्य था कल की मुरली में, ये विकार एक दिन चले जाएंगे, क्योंकि अभी तुम रात में हो इसलिए, तो ये जो आ सकती है ये भी मिट जाए। जो कहते हैं धन माया है, वो अपने एक प्रवचन के कितने लेते हैं? तो धन और लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, हाथ में नहीं रहती, जो पकड़ के रहता है उससे वो छीन ली जाएगी, और जिसके हाथों में हजारों लाखों आते हैं, हजारों लाखों चले जाते हैं, उसके पास आते रहता है, और जो पकड़ के रखता है मेरा है, उसके पास आना बंद हो जाती है, और जो है वो भी छीन जाता है। इसके लिए उसको आने दो और जाने दो, प्रवाह है धन में, वो प्रवाह चालू रहे। तो धन का भी समर्पण, उद्देश्य बहुत शुद्ध हो, मंशा बहुत शुद्ध हो कि ये धन बाबा की सेवा में लग जाए, किसी का इससे कल्याण हो जाए, ये भाव हो, और उसके प्रति भी कोई आसक्ति ना हो। और तीसरा, तीसरी बात धन के विषय में, किस तरीके से वो कमाया जा रहा है, किसी का शोषण करके तो नहीं धन प्राप्त कर रहे, सफेद है काला है कैसा है। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा हम लॉटरी ले ताकि आपकी सेवा में लगा सके। बाप कहते हैं मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, भगवान चाहता तो करोड़पतियों को टच करा दिया होता, पर परमात्मा तालाब, परमात्मा तालाब गरीबों के पाई पाई से भरेगा, फूरी फूरी तालाब मुरली में आता है। तो धन के ये तीन समर्पण, तन मन धन, उसके बाद में चौथा बुद्धि का समर्पण। बुद्धि के बहुत सारे कार्य है, तीन मुख्य है, कल हमने साथ देखे थे, तीन मुख्य, एक धारणा करना, निर्णय करना और परखना, इसका भी समर्पण। और बुद्धि में अहंकार किस बात का आता है, विशेषताओं का, मैं ये जानता हूं, मुझ में ये कला है, ये हुनर है, ये केवल मैं ही कर सकता हूं, दूसरों को ये नहीं आता, नहीं समझ में आता, बुद्धि में अहंकार भरा होता है, ये मेरी आइडिया, ये मेरा ओपिनियन, ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अगर हमारी ये आइडिया नहीं ली तो जाओ तुम लोग करो, हम जा रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। बुद्धि बहुत कुशाग्र हो परंतु साथ साथ उसमें विनम्रता हो, नहीं तो वो बुद्धि विनाश कर देगी। संसार में बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पर क्या वो शक्तिशाली है? नहीं। तो बुद्धि का भी समर्पण, टोटल सरेंडर, बुद्धि को ही अर्पित कर दिया, और बाबा को बुद्धि, हमने अपनी बुद्धि अर्पित कर दी तो वो क्या कर देगा, उसको दिव्य बना देगा, और क्या कर देगा, जो तुम्हारी हुनर है उसको और निखारेगा, जो स्किल्स है बहुत शार्प हो जाएंगे, और ऐसी बुद्धि यज्ञ में काम आएगी। बुद्धि का समर्पण। पांचवा, संस्कारों का समर्पण, अपने सारे संस्कारों को भी अर्पित कर देना, ये तो सबसे सूक्ष्म समर्पण है। मन का समर्पण सूक्ष्म है, तन का स्थूल है, धन का उससे भी ज्यादा स्थूल है, मन का सूक्ष्म है, मन से भी ज्यादा बुद्धि का सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी ज्यादा सबसे सूक्ष्म समर्पण कौन सा है? क्यों? क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिक है, हमारे अधीन नहीं है संस्कार, हम उसके अधीन चलते हैं। इसके लिए संस्कारों का समर्पण सबसे सूक्ष्म है, मन के समर्पण से भी सूक्ष्म है संस्कारों का समर्पण। वो कैसे करेंगे? संस्कार अपने आप काम कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो दारू पीता है, कहता है मैं आज से दारू समर्पित करता हूं, कर दिया और दूसरे दिन वापस चालू। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। नए संस्कार, हमारे तीन प्रकार के संस्कार, एकदम अनादि, आदि और फिर द्वापर के, अभी के, अगर देखा जाए तो उन पुराने, सबसे पुराने संस्कारों को इमर्ज करना, सबसे अनादि आदि परमधाम के और सत्युग त्रेता के, तो ये जो बीच के संस्कार है ये विलीन हो जाएंगे। तो ये अभ्यास का काम है, प्रैक्टिस चाहिए यहां पर, बिना उसके नहीं होगा ये। तो संस्कारों का भी समर्पण। एक संस्कार कैसे बनता है? लंबे समय के अभ्यास से। वही 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 चीज बार बार करते रहो, संस्कार बन गया। अब उसको समर्पित करना अर्थात रिवर्स करनी पड़ेगी सारी प्रोसेस। संस्कारों का भी समर्पण, पहले तो आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा संस्कार है जो बहुत गहरा है और जो श्रीमत के विरुद्ध है और जिससे मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप आ जाता है, कहां से आता है पता नहीं चलता है, अचानक टपकता है और गिरा देता है और चला जाके भाग जाता है, धक्का देता है पीछे से और भाग जाता है। बहुत शरारती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा बेल बजाने की कोशिश कर रहा है एक दरवाजे पर, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है, एक पादरी वहां से जा रहा है, देखता है बेचारा छोटा सा बच्चा, इसकी मदद करनी चाहिए, जाते हैं कहते हैं कि क्या करना है, वो कहता है ये बेल बजाना है, मतलब घर जाना है अंदर, तो कहते हैं कोई नहीं मैं बजा देता हूं, तो पादरी बजाता है, तो बच्चे से पूछते हैं अब, बच्चा कहते हैं अब क्या, भागो। बेल बजाओ और भागो, मेरा काम हो गया। अब ये संस्कार भी कैसे है, कुछ कुछ बहुत शरारती है, आते हैं हम खड़े हैं पीछे से धक्का देके भाग जाते हैं। कब आएंगे, कहां से आएंगे पता नहीं, अपरिचित से। जो हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी के जैसा है, हम उस पड़ोसी से बहुत नफरत करते हैं, हमको देखना भी नहीं है उसको, पर हम खड़े हैं एकदम खिड़की से देखता है, अचानक से आ जाता है, हम बाहर निकलते एकदम खड़ा है वहां पर, हम उसको देखना ही नहीं चाहते, इतनी नफरत है उससे। दुकान में जा रहे हैं सब्जी खरीद रहे हैं, वहां से पीछे से मुड़ के देखता है। हमको बात ही नहीं करनी है उससे, पर वो बार बार सामने आ जाता है। तो अपने ही संस्कारों को ढूंढना है, ये मेरा संस्कार बन गया है, सोचने का ऐसा संस्कार ही बन गया है, निगेटिव ही सोचा जाता है, कोई सामने आता है तो उसके बारे में अपने आप ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। पास्ट में कोई बुरी घटना हो गई, उसके लिए सोच सोच के पर्वत खड़ा कर रखा है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, संस्कार है, ओवर थिंकिंग का संस्कार, अति सोचना। छोटी छोटी बात हो गई छोड़ दो, पर पकड़े हैं उसको और सोचते रहते हैं उसके ऊपर, गहन चिंतन करते हैं, कैलाश पर्वत खड़ा करते एक और फिर उसको ढोते रहते हैं। बाप कहते हैं छोड़ो, बच्चे कहते हैं पकड़ के रखते हैं और कहते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, मुरली है ना, छोड़ो तो छूटे, तीन प्रकार के पक्षी। तो जो भी किया जाए उसको क्या कर देना, सौंप देना, समर्पित कर देना, स्वाहा कर देना। वो संस्कार भी उसका, जैसे उस बुढ़िया की कहानी सुनाई थी, वो सुबह उठती है और घर का सारा कीचड़ा जो है वो एक कटोरी में भरती है, एक थे इसमें लेती है टोकरी में, और वो सारा वो भगवान की जो मूर्ति है उसके सिर पर चढ़ा देती है। एक सूफी संत वहां से जा रहा था, वो कहता है क्या करती हो तुम? वो कहती है कुछ नहीं, घर का सारा कचरा जो है सामने भगवान की जो मूर्ति है उसके ऊपर स्वाहा कर दिया। वो कहती है ये क्या कर रही हो तुम, ऐसा करते हैं क्या, ये तो धर्म ग्लानी हो रही है, भगवान का इतना बड़ा अपमान मैं नहीं सहन कर सकूंगा। वो कहती है मैं क्या करूं, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ उसी का है, फूल भी चढ़ाती हूं तो कचरा भी उसके ऊपर चढ़ा देती हूं, मैं अपने लिए कुछ रखती ही नहीं हूं, सब कुछ उसका है। वो कहता है ये तुम बहुत बुरा करती हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। वो कहती मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ उसी का है, अच्छा बुरा, अच्छाई बुराई, फूल कीचड़ा सब कुछ। सूफी संत जाता है वहां से, रात में एक स्वप्न देखता है, स्वप्न में देखता है कि भगवान अपने सिंहासन पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वो अभी सुबह का समय है, तो ये सूफी संत देखता है कि सुबह सुबह भगवान के सिर पर कचरे का एक टोकरा गिरा। भगवान कहता है ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी, फिर से उसका कीचड़ा गिर गया। फिर सारे दिन भर वो सूफी संत वहीं बैठा रहता है भगवान के दरबार में, क्योंकि दुनिया भर के लोग फूल चढ़ा रहे हैं, मालाएं पहना रहे, मिष्ठान क्या क्या दे रहे, जलाभिषेक कर रहे, कुछ तो गिरेगा, कुछ भी नहीं गिरता दिन भर, बस वो सुबह जो बुढ़िया का कीचड़ा गिरा था बस वही, दिन भर कुछ भी नहीं गिरा। उसे आश्चर्य होता है सारी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कर रहे हैं लोग, और क्या क्या तुझे स्वाहा कर रहे, कोई पैसे चढ़ा रहा है, जलाभिषेक कर रहा है, दूध चढ़ा रहे, सोने का हार, इसका हार, उसका हार, वो कुछ भी नहीं गिरा। वो पूछता है भगवान से वो दिन भर का जो लोग चढ़ा रहे वो कहां गया। भगवान कहते हैं वो जो चढ़ा रहे हैं वो आधा अधूरा चढ़ा रहे, और आधा अधूरा मुझ पर नहीं चढ़ता, वो जो समग्र है केवल वही मुझ पर चढ़ता है। वो जो बुढ़िया है उसका समर्पण जो है वो इंटीग्रेटेड सरेंडर है, कंप्लीट संपूर्ण समग्र समर्पण, ऐसा ही मुझे स्वाहा होता है, मुझे स्वीकार होता है, बाकी ऊपर से दिखावे वाला समर्पण मुझे स्वाहा नहीं होता है, मेरे प्रति नहीं लगता है, जिसमें जरा भी दिखावा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे हम वैसे है। समर्पण बहुत सूक्ष्म है, उसकी परिभाषा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, और उसको वास्तव में जीना यह तो सबसे सूक्ष्म है, इतना वो स्थूल नहीं है, उसका संबंध किसी बैच से, किसी वस्त्र से, किसी समारोह से या किसी स्थान से बहुत कम है। महाराष्ट्र के एक संत है तुकाराम महाराज, वो लिखते हैं कि यदि साधु के वस्त्र पहनकर कोई साधु बन जाए तो ये जो गदा है जा रहा है इसको साधु के वस्त्र पहनाओ, ये भी सन्यासी बन जाएगा। संस्कारों का भी समर्पण कर देना हाईएस्ट स्टेज ऑफ सरेंडर है। उसके बाद में है संबंधों का समर्पण, छठवा संबंध। इसमें भी फिर से तीन बातें, लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध, और तीसरा संबंध हमारा अपने आप से। अपना अपने आप से मेरा क्या संबंध है उसको भी समर्पित कर देना, लौकिक को भी समर्पित कर देना, अलौकिक को भी समर्पित कर देना। अलौकिक संबंध सबसे बड़ी माया है ब्राह्मण जीवन में। इस परिवार के बीच ऐसे संबंध बना के रखते हैं जैसे लौकिक से भी घने, लौकिक से तो एकदम वैराग है, लौकिक वालों की तो बिल्कुल याद ही नहीं है, फोन करते हैं तो हां और ना में जवाब है, और अलौकिक वालों के साथ आधा आधा घंटा भी कम पड़ता है। लगाओ आज की मुरली में वरदान में है, अच्छा लगता है, ये भी काम का अंश है, ये भी कामना है, ये भी काम का अंश है, सभी अच्छा लगे, सभी अच्छा लगे, सभी विशेष है। यही क्या करता है लास्ट संडे की मुरली गड़बड़, दाल में काला है कुछ, ये भाई बहुत ही अच्छा है, सेवा बहुत अच्छी करता है, इसमें गुण भी बहुत है, इसको तो लेना ही चाहिए इस सेवा में। ही गड़बड़ करता है, सब अच्छे, ऑल और नन, एक तो सब मेरे हैं और दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। ऑल और नन, इसको कहते हैं ऑल और नन फिलोसॉफी, सब मेरे सब अपने, या तो किसी से कोई मतलब नहीं है, दोनों चीजें है। तो संबंध का भी समर्पण, हमारे संबंध ऐसे हो जो भगवान के दरबार में स्वीकार हो। यदि उस संबंध को भगवान के सामने पेश किया जाए तो बाबा कहे कि हां मैं सर्टिफाई करता हूं यह अलौकिक संबंध है, इसमें विकारों की गंध नहीं है, वो पति पत्नी का संबंध खत्म, मैं मां ये मेरा बच्चा खत्म, ये मेरी मम्मी ये मेरे पापा खत्म, अलौकिक मम्मी पापा ये नए हैं अभी, इसलिए कहा ब्राह्मण परिवार के जो संबंध है वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, वो फंसा देते हैं, और जब फंसने के बाद भी ये नहीं पता चलता है कि हम फंस गए, पिंजड़ा है पिंजड़ा। इसलिए इस ब्राह्मण परिवार में भी जो जितना डिटैच्ड है न्यारा है वही प्यारा है। सेवा कर ली, काम पूरा हुआ, टाटा बाय बाय। हाँ हाँ झील वाला, बीच में झील हो बस, वो उधर हम इधर, संबंध। और लास्ट सातवें प्रकार का समर्पण है कर्म, उसमें भी तीन, कर्म का उद्देश्य, कर्म और कर्म का परिणाम, ये तीनों ही समर्पण। ये कर्म किस लिए कर रहे हैं वो उद्देश्य भी समर्पित, कर्म से भी डिटैच्ड, और कर्म का जो परिणाम है उससे भी डिटैच, उसमें भी कोई आसक्ति नहीं। मुरली चली थी अभी अभी अव्यक्त वाणी, वो 84 के कानपुर, वो घर जल गया था ना, बाबा ने कहा जैसे घर अगर बच गया होता तो वाह वाह करते, अब जल गया ना अब भी वाह वाह करो, सेंटर जल गया ना अब वाह वाह करो, इसमें भी अचल अडोल रहो, उसको भी स्वीकार करो उसको भी स्वाह कर दो। तो सात प्रकार के समर्पण है, तन मन धन बुद्धि संस्कार संबंध संपर्क, संपर्क संपर्क का भी समर्पण, संपर्क का अहंकार होता है, कैसे हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारी बहुत पहुंच है, कुछ चाहिए हो तो बोल देना, टोली वगैरह चाहिए एक फोन लगाना है बस काम हो जाएगा, कितना दिन रहना है तुमको, चार दिन, एक फोन लगा देता हूं बस, मेरा नाम बस नाम बता देना, फोन लगाने की क्या जरूरत है, तुम बोल देना मैंने बोला है करके काम हो जाएगा तुम्हारा। तो संपर्क का भी अहंकार, हमारे कॉन्टेक्ट बहुत है, हमारे वीआईपी ज्यादा है स्टूडेंट, हमारे वीआईपी बहुत है, इसका भी अहंकार, हमारी बड़ो बड़ो से पहचान है, ऊपर तक पहचान है। अगर ऐसा ही बोलना है तो ये बोलना चाहिए हमारी भगवान से पहचान है, तुमको कुछ काम है क्या, बोल देना हम बोल देंगे उसको फोन करके, ऐसा बोलना है, सबसे बड़ी पहचान सबसे बड़ा वीआईपी तो वही है, तुमको कुछ चाहिए भगवान से तो बोल देना, मेरा बहुत रोज का ऐसे क्या कहते हैं उसको आना जाना है, उठना बैठना उसके साथ ही है, इतना समीप का संबंध है क्या बताऊं, रोज की गपशप चलती है हमारी, तो कुछ भी चाहिए हो तो बोल देना बस, मैं जस्ट एक फोन लगा दूंगा काम हो जाएगा तुम्हारा, ये बोलना है, ये संपर्क का अहंकार, वो संसार के संपर्क का अहंकार नहीं, नहीं तो इसका भी समर्पण, तो संबंध का भी समर्पण और संपर्क का भी समर्पण, और लास्ट कर्म, कर्म से भी ज्यादा सूक्ष्म है कर्म के परिणाम का समर्पण। अच्छा कर्म किया अच्छा परिणाम आया बहुत आसान, पर अच्छा कर्म किया पर कोई परिणाम नहीं आया, इसमें फिर दुख होता है, फीलिंग आती है कि हमने इतनी सेवा की कुछ भी नहीं निकला, कोई भी नहीं निकला, दुख होता है। किसी ने पानी भी नहीं पूछा, कोई खातरी नहीं हुई, हम खातरी लेने गए थे या सेवा करने गए थे। तो सात प्रकार के समर्पण, तो ये एक समर्पण की और एक परिभाषा। कि जिसमें हर चीज का स्वाहा कर देना, अर्पण कर देना, आज की मुरली, आज का वरदान, आज का विशेष पुरुषार्थ जो है वो कोई भी कर्म करते सदैव यह स्मृति रहे कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, उसका वरदान मेरे साथ है, उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। जहां भी मैं सेवा करने जा रहा हूं, गांव है वहां पर संदेश देने जा रहे हैं, लोग पूछते नहीं है कोई, वहां पर बाबा मेरे साथ है, उसका वरदानी हस्त सिर पर है इधर, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उसके हाथ में है, अर्थात जीवन उसके हवाले, जीवन स्वाहा किया है, समर्पण किया है, वो देखभाल करेगा उसकी। उस बच्ची जैसा नहीं करना है, उसको नहीं बताते रहना है ये करना वो करना, खिलौना टूट गया उसने जोड़ने की कोशिश की, नहीं जुड़ा, वो पजल होता है ना टुकड़े टुकड़े वाला खिलौना, इधर से जोड़ते उधर से जोड़ते, भगवान कहता है मे आई हेल्प, वो कहती है लो करो मदद, भगवान को दिया तो, परंतु क्या करती रही बीच बीच में, ऐसे नहीं वैसे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये यहां थोड़ी जोड़ते हैं, तुमको इतना भी नहीं पता ये यहां जोड़ा जाता है, भगवान क्या कहता है, तुम ले लो, तुमको जो करने करो, सौंप दिया अर्थात इंटरफियर नहीं करना अब उसके काम में, उसको दे दिया है, अब वो करेगा, वो डिसाइड करेगा, और वो जो करेगा ना वो हमारे लिए बेस्ट होगा, पर हम अपनी संकुचित दृष्टि से देखते हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है कि यही राइट है, वो जो कह रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, फिर जिम्मेवारी उसकी हो जाती है, सभी बोझ पाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी विशेषता है हल्कापन, हल्के रहना, भारी कोई भी चीज हमको ना करे, कोई भी व्यक्ति हमको भारी ना करे, किसी को फोन लगा रहे हो फोन नहीं उठा रहे भारी हो गए, किसी को मैसेज किया कोई उत्तर नहीं दे रहा है भारी हो गए, किसी ने कुछ कह दिया भारी हो गए, किसी ने ठीक व्यवहार नहीं किया भारी हो गए, हमने कुछ मांग की डिमांड की हमको ये चाहिए नहीं मिली भारी हो गए, किसी ने अपमान कर दिया सबके सामने भारी हो गया, अच्छा मनपसंद खाने से भी भारी हो जाते नहीं मिला तो कि वही 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 भारी। हल्का कैसे रहे इसकी कला हर एक को खुद ही सोचनी है, समझनी है, अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि मुझे इस ब्राह्मण जीवन में कैसा रहना है, हल्का, जितना हल्का रहेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो हर चीज भारी करने वाली है, कमरा ठीक नहीं है, कमरे का रहने वाला पार्टनर ठीक नहीं है, मौसम भी ठीक नहीं है, यहाँ पे पानी ऐसा है, यहाँ पे लाइट थोड़ी डिम है, यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे करते हैं, भोजन ठीक नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, छोटी छोटी चीज आत्मा को दुखी कर देती है। ये किसी ने लिखा है पांच चीजें जो खत्म होने पे बहुत तकलीफ देती है, पहला दोस्ती, दूसरा पैसा, तीसरा प्यार, चौथा रविवार, और पांचवा इंटरनेट पैक, लास्ट वालों तो बिल्कुल रुला ही देता है लास्ट वाला क्या करता है एकदम रुला देता है तो इस संसार की कोई भी बात हमें भारी ना करे, अगर कर रही है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, यहां जो है अंडरस्टैंडिंग का लेवल उसको और आगे लेके जाना है कि दूसरा व्यक्ति अगर होता तो उसने क्या किया होता। यहां पर कई सारे ऐसे भाई बहन है देखे है कि उनके साथ में इतना खराब खराब हुआ है, अपमानित हुए, परंतु इतने लाइट है, फिर भी हल्के है, कोई बोझ नहीं है ऊपर, उसमें भी कुछ सकारात्मकता ढूंढ लेते, अगर हम उनकी जगह होते तो शायद टूट कर गिर गए होते, ऐसा भी लगता है कि इन्होंने कितना सहन किया फिर भी कितने लाइट रहते हैं, कितने हल्के रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया ठीक है बोल दिया, उनको अपमान की महसूसता नहीं होती है, फीलिंग नहीं आती है उनको वो भी अच्छा है न सुनाई दे जैसे वो मेंढक सारे मेंढक गिर जाते हैं, उनकी लड़ाई होती है, रेस होती है ना पहाड़ पर चढ़ने की, सारे मेंढक चढ़ते हैं, लोग कहते हैं अरे तुम लोग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मेंढक बाकी सब सुनते हैं नीचे गिर जाते, एक मेंढक जा ही रहा, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, एकदम पहुंच गया ऊपर तक। लास्ट में जब उसका इंटरव्यू हुआ, पत्रकार आए, मीडिया आई और उसे पूछा कि भाई तुम कैसे चढ़े, तो वो कहता है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा है सुना ही नहीं है उसी तरह दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनको बोलने दो इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लाइट ले, सीरियसली ले लेना है कहने का भाव, क्योंकि परिवार है, आज की मुरली में भी है ना, ये परिवार है, उनको बोलो, या बाप बच्चे आज की मुरली में है, वो लोग कहते हैं ये क्या है, यूनिवर्सिटी है, ऐसा कुछ है ना, ये संस्था है, उनको कहो ये संस्था नहीं है, ये परिवार है, तो ये परिवार है, परिवार में कोई ना कोई कुछ तो कहेगा ना, भाई बहन है तो भाई तो कभी ना कुछ करेगा, बहन को कुछ करेगा, एक दूसरे लड़ते हैं ना, तो ठीक है, तो इसमें ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है। तो मैं की मटकी फोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हृदय, मक्खन मक्खन बन जाएगा। तो कोई भी कर्म करते सदैव यह याद रखो कि बाबा मेरे साथ है, ब्राह्मण जीवन का हाथ उसके हाथ में है और जिम्मेदारी उसकी है, सारे बोझ उसको दे दो और स्वयं को क्या कर दो, हल्का कर दो, कोई भी चीज मुझे भारी न करे, क्योंकि भारी होने के बाद क्या हो जाता है आगे नेक्स्ट स्टेज, दुख, उदासी, बाबा ऐसा क्यों करता है, आज की मुरली में है ना, मैं ना किसी को दुख देता हूं फिर भी मुझे गालियां देते हैं, उस दिन तक कच्ची कच्ची गालियां देते हैं मुझे, फिर बाबा कोई दोषी ठहराते, बाबा हमारी तरफ देखता ही नहीं, बाबा हमारी कोई सुनता नहीं, उसको हमारी परवाह ही नहीं, हम है भी नहीं है या नहीं है पता नहीं, उसको पता है कि नहीं हम इस यज्ञ में भी है, ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, शायद वो भूल गया है उसे पता नहीं, भगवान को हर चीज पता है, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, और हमारा हर संवाद जो भगवान के साथ है उसमें वो भाग लेता है, He participates in our every conversation, वो हमारे हर संवाद में भाग लेता है, केवल हमें उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है, बस यही एक है। तो आज का सारे दिन का ये पुरुषार्थ है, समर्पण, हल्कापन, जिम्मेदारी उसकी, और हमको वो चला रहा है, जैसे वो चलाएगा हम चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।
कभी छाओ बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर धूप में, कभी छाओ बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा